रैत मर्यादा जो बनी है इस तो पहला तकरीबन 37 मर्यादा चल रही है। सब आवाज नहीं बजा, आवाज जरा नहीं आ रही। कोई और दूसरा रख रहा है, चलो मैं ठीक। जेड़ी रैत मर्यादा आज प्रचलित है इस दे बनन तो पहला 37 मर्यादा चल रही है सन। अते पंथ ने एक बहुत बड़ा पर पुकार कीता, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने, के वक्त दे पंजी महाविद्वान उन्हां नूं इकट्ठा कर लिया, जिन्हां दे नां लैण दी लोड़ नहीं है। उन्हां विच भाई वीर सिंह जी, भाई रणधीर सिंह जी, भाई कान सिंह जी, प्रिंसिपल तेजा सिंह जी, संत संगत सिंह जी, संत निश्चल सिंह जी, अते उस वेले दे जितने विद्वान सन एक थां ते बिठा लिया। तकरीबन वो 9 साल सारिया मर्यादा देखते रहे, अते उस तो बाद जो उन्होंने मसौदा बनाया उसनू सारी दुनिया अंदर भेजा। फिर 50 जथेबंदियां इकट्ठिया हुई सारी दुनिया दी, उन्होंने जिथे जिथे कोई राय से वो दे दी, उस राय नू मन लिया गया या उन्हें समझा दिता गया। उस तो बाद ये जो आज आप दे हाथ विच रैत मर्यादा है ये प्रवान हो गई। पहला इतनिया क्यों सन इसका थोड़ा जा जवाब देना जरूरी है कि इतनिया मर्यादा क्यों चल रही है। उसका कारण यह है कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जो भी अपनी जिंदगी अंदर करते सन अलहदा अलहदा सिख देखते रहते सन। छोटी जी मिसाल लीए, महाराज जिसले लंगर च बह के प्रसाद छकते सन, लंगर बनाते सन, लंगर देखते सन, एक साडा प्रसिद्ध लांगरी से भाई प्रहलाद सिंह, जो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नू लंगर बनाद्या, लंगर छकांद्या, लंगर रस्त लियाद्या, चुल्हा बालद्या देखिया, उस भाई प्रहलाद सिंह ने एक रहतनामा लिख दिता कि गुरु इस तरह करते हैं, ये सिख ले जरूरी है। एक सन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नू खिडांदे सन, अते जिसले वो वड्डे हो गए भाई चोपा सिंह जी, जो कुछ गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नू गोद तो लैके उसने अखीर तक ज्योति जोत समान तक डिठा भाई चोपा सिंह जी ने, उसने वो अपने रैत मर्यादा च लिख दिया। अते भाई दया सिंह जी के बारे तुसी जानते हो क्योंकि वह पंजां प्यारियां विचों सन, उन्हां भी एक मर्यादा इस तरह लिख दी। इस तरह थां थां ते सिख जो भी गुरु नू दूरों नेड़ियों तकदे सन वो लिखी जांदे सन। मैं एक मिसाल दिया किवें मर्यादा बनी। जेड़ा भाई चोपा सिंह सी ना, ये रोज देखे कलगीधर महाराज जिसले विराजदे हन सौण लगदे हन, ते जेड़ा दीवा है ना उसनू हथ नाल बुझांदे ने, या उन्हां कोल जो पल्लू हुंदा है उस नाल बुझांदे ने। सारी जिंदगी हैरान हो गया, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने दीवे नू बुझाण वेले फूक नहीं मारी। तो उस विचारे ने लिख दिता, कोई सिख जो दीवे नू बुझाण वेले फूक मारे ओ तनखाइया। हुण उसके दिमाग इसी कोई खास कारण होएगा, हुण महाराज का अपना सुभाव सी किस तरह नाल जितनिया मर्यादा हूँ समझ नहीं कि एक एक सिख ने किस तरह लिखी किमें उसने बनाई किमें उसने दसी ये फिर पंथ ने बड़ी सियानप की थी क्योंकि मर्यादा जरूरी है सारा पंथ ते शरीर चलान ले इस करके रहत मर्यादा अंदर दो शब्द पाए एक उत्ते लिखे है शख्सी रहत दूसरा हिस्सा है पंथक रहनी ये साढ़े दो मुख चैप्टर हैं रहत मर्यादा दे या इसमें होर समझाना होवे या समझना होवे ये जिहड़ी रहत मर्यादा है ना एक कलेक्टिव परसनैलिटी ऑफ द पंथ है जिवें हर बंदे दी शख्सियत है उसनूं जरा चोट लगे तकलीफ है कोई ऐसा इंसान नहीं है जिहदी अपनी शख्सियत नहीं है इसे तरह सारे पंथ दी शख्सियत है अगर उसनूं किधरे चोट वजे तो बहुत दुख हुंदा है कलगी वाले नूं या सारे पंथ नूं इस करके इस मर्यादा अंदर दो चैप्टर लिख दिते गए एक दा नां रखिया शख्सी रहनी दूसरे दा नां रखिया पंथक रहनी अज मेरा जितने मिनट बाकी हैं ये शख्सी रहनी की है सिख दी कोई खास शख्सियत है अगर वो शख्सियत है ते फिर समझो पंथक रहनी बना सकेगा हौली हौली सारियां दी शख्सियत जिसले ऐसी बन जाएगी जो रहत मर्यादा च लिखी है ते फिर पंथ दे अंदर जो भी असी किसे थां ते जरा मासा भी देखने हाँ उकाई वो दूर हो जाएगी शख्सी रहनी अंदर सब तो जरूरी जेड़े अंग हन लिखे हुए हन अगों तीन अध्याय तीन अगों होर शख्सी रहनी दे हिस्से बना दिते कि जे किसी ने अपनी शख्सियत नू मुकम्मल करना है ये तीन चीज़ा बड़िया जरूरी हैं पहला नाम बाणी दा अभ्यास दूसरे गुरमत दी रहनी दी सूझ तीसरे सेवा हुण जे किसी ने मुकम्मल शख्सियत बनानी है ता ए तीन अंग बड़े जरूरी हैं इन्हां दे अगों फिर आर्टिकल्स अंग्रेजी च कहिंदे ने उस दे अगों खास खास नेम बना दिते ने गुरमत नाम अभ्यास दे सत नेम हैं अते गुरमत दी रहनी दे पंज हैं सेवा दे तीन हैं ते मैं पिछले दो अज नहीं आप नाल सांझ कर सकांगा सब तो जरूरी है नाम बाणी दा अभ्यास क्योंकि ये अगर कायम हो जाए फिर कोई किधरे होर चाकेगा नहीं भाई दया सिंह जी ने जिस वेले अपना रहत मर्यादा शुरू कीता है उस उत्ते एक बड़ी खूबसूरत उन्होंने तुक लिखी है जिसनों समझ लो ये साड़ी सारी बुनियाद है भाई दया सिंह जी लिख देने सिख शब्द ती पहचानी है अगर सिख नू पहचानना है उस दे मुंह च देखो शब्द की है अते रहत ती जानी है ये अगर दो चीजा नहीं हैं ता समझ लो दी शख्सियत मुकम्मल नहीं है इस करके सब तो जरूरी है पहला नाम बाणी दा अभ्यास नाम बाणी दे अभ्यास दे अगों सत इस दियां तारा हन अगर ये सत मुकम्मल हन समझ लो साढ़े अंदर नाम दा अभ्यास शुरू हो गया हुण इस तो आसान तरीका मेरा ख्याल है इतने विद्वान जेड़े इस सदी दे विद्वान हन साढ़े लिए दस नहीं सन सकते फिर कोई मनुख कोई औरत कोई भैन कोई भरा इस दर तो बगैर किधरे होर जाएगा नहीं क्योंकि ये जरूरी है शख्सियत मुकम्मल करने लई नाम अभ्यास इसका पहला अंग है ये तो मैं बेनती करांगा अपने बेटे वीर कि रहत मर्यादा घट तो घट इस तरीके नाल असीं छाप इस तरीके नाल रहे अंग्रेजी ताकि आम बंदा इस वे ना समझ ले कोई गुच्छा है ਬੋਧਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਗੁੱਛਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਗੁੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰੈਡੀ ਰੈਕਨਰ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕਿੱਥੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਉਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਭਾਵੇਂ 2 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ 10 ਮਿੰਟ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਤਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਕੁਲੈਕਟਿਵ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਨਾ ਤੋੜੇ, ਇੰਝੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਇੰਝੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਦੁਸ ਨਾ ਮਾਰੇ, ਇੰਝੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਆਤਮਾ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ। ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਂ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਪ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਬਾਤ ਇਹ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਹਿ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਏ, ਅਰਥ ਵਹੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਨਾ ਕਦੀ ਘਬਰਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਥਾਹ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ ਕਿ ਮਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਰੇ ਕਿ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੁਛ ਇਨਸਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਦੀ ਨਿਰਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਿਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਚਲੋਗੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੁਛ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਖੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸਿੱਖ ਦੀ ਰਸਨਾ 'ਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਤਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਰਤ ਉੱਚੀ ਹੈ ਉਤਨੇ ਹੀ ਉਹ ਅਰਥ ਕਰੀ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਉਸਦੀ ਸੁਰਤ ਇਤਨੀ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਰਥ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜੇ ਉਹ ਉਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਅਜੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਬਦੀ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਤੁਕ ਦੇ ਅਰਥ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਰਥ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਾ ਘਬਰਾਉਣਾ, ਜਿਤਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਰਤ ਦਾ ਐਂਟੈਨਾ ਉੱਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਤਨਾ ਉਹ ਵੱਧ ਕੈਚ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਠੀਕ ਐਂਟੈਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕੈਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੁਰਤ ਦਾ ਐਂਟੈਨਾ ਇਤਨਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਅਰਥ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੇ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਸ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸਰਾਮ ਲਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਸੀਂ ਟਿਕ ਕੇ ਠੀਕ ਤੁਕ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਕੇ ਪੜਾਂਗੇ, ਅਰਥ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਤਨੀਆਂ ਖੇਚਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਤੁਕ ਪੜ੍ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਹਿ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਏ। ਹੁਣ ਸ਼ਬਦੀ ਅਰਥ ਇਹੀ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਰੱਖਾਂ, ਆਸਾਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਫਿਰ ਕਹਿ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਏ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਭੇਟ ਕਰਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇੰਝ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਕਹਿ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਏ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰਾਂ, ਕਿਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਟੁਰ ਪਵਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿਸੇ। ਫਿਰ ਕਹਿ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਏ, ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਅਗਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੁਰਤਿਆਂ ਉਪਜੇ ਚਾਓ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਚਾਅ ਨਾਲ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੌਂ ਕੇ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣ ਦਾ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੱਕਾ। ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਜਗਾਏ 'ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੌਂਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣ, ਸੁਰਤ ਦਾ ਚਾਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੁਰਤ ਦਾ ਚਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰੇ ਸੁਬਹਾ ਕੇ सुरतियां उपजे चाहो तीन दरियावां स्यों दोस्ती, मतलब समझो वाला दिल भी खुला हो जाएगा, वो फिर छोटिया छोटिया बातें च नहीं पवेगा, उसका हमेशा ही ख्याल रहेगा। तीन दरियावां स्यों दोस्ती मन मुख सच्चा चाओ, उसके मन विच भी ते मुख विच भी यो होएगा तेरा जो होंद है वाहेगुरु। इसलिए महाराज ने अमृत वेले नू अत्यंत जरूरी किया, जे वाहेगुरु का दीदार करना है तो अमृत वेला जरूरी है। भाई गुरुदास जी ने तो गल ही मुका दी है, क्योंकि वो भी एक बड़ी सुरत वाले बंदे सन, वो कहते सन भलिया लोका रोज़ मेरे को आउंदा है कि वाहेगुरु का दीदार किवें होवे, तैनू मैं एक आसान जिहा नुस्खा दसदा हाँ, अमृत वेले अपने मूँह तो चादर उतार दे, वाहेगुरु भी अपना निकाब उतार देगा। हुण इस तो आसान रस्ता की हो सकता है, अमृत वेले तू उठ के उस दी याद विच, ए है सब तो जरूरी जो सानू हुक्म कीता, ताकि जिस भी सिख ने कोई नहीं है जी बार बार आखिया है कि हैन विरले नाही कने तो घबराना नहीं है, अगर एक भी लाइट हाउस है तो कई जहाज बच जाएंगे। कितने के लाइट हाउस होंगे सागर अंदर, मैं पिछली बारी सिंगापुर गया तो मैं कहते कितने लाइट हाउस ने, कहते जी कुल 13, इतना बड़ा सागर तो कुल 13 लाइट हाउस, तो जहाज कितने लगते ने किनारे, तकरीबन 10 to 20,000 जहाज लाइट हाउस किनारे ला रहे हैं। अगर एक शहर अंदर एक दो भी लाइट हाउस हैं तो बड़िया के शरीर रूपी जहाज किनारे लग जाएंगे। इसलिए लाइट हाउस जड़ा है ये अमृत वेले तो बगैर किसी थान पर किसी वेले भी नाम अभ्यास शुरू नहीं हो सकता, भावें कोई लख यतन करे। दूसरा आपने अमृत वेले तो बाद किया नितनेम, ये फिर नितनेम नियत हो गया है, वध खट नहीं करना, उन जिना मर्जी पढ़ो। देखो मेरा गुरु है एक बहुत संसार ते आई हुई बरकत, जो चीज़ वो लिख गए हैं जेड़ी वो बना गए हैं कोई नुस्खा, इहदे विच वध घट ना करो। अगर किसी ने वध पाठ करना है रज के करे, अगर किसी ने सुखमणि साहब पढ़नी है तो चाह नाल पढ़े, लेकिन ये नितनेम जो है जिसने नाम अभ्यास नू कायम करना है वो आप सानू समझा गए ने, यह नितनेम है जप जी दी बाणी जाप साहेब दा पाठ सुधा सवीए दा उचारण सोदर दी बाणी, ताकि किसी वेले भी दरवाजे तो मैं भटक न जावा। सोदर एक कलगीधर पातशाह ने मेहर की है, सोदर बनाया सी गुरु अर्जन पिता ने, सो पुरख दी बाणी लिखी गुरु ग्रंथ साहिब विच कलगी वाले ने, यह सो पुरख कलगी वाले ने चुनिया है, जिवें सोदर दी चुन के बाणी लिखी है ना साहिब गुरु अर्जन पिता ने, इस तरह गुरु ग्रंथ साहिब चों मथ के आपने दसिया कि सारी दिहाड़ी तो बाद सोदर दरवाजे ते जा दिसेगा सो पुरख, सो पुरख कर गए बेनती। इस बाणी का नाम गलती नाल मुँह चढ़ गया, मेरे भी चढ़ गया, आप जी दे भी चढ़ गया, चौपई ये चौपई नहीं है, बाणी का नाम तो बेनती है, पर पता नहीं किस तरह चढ़ गया। कभी किसी ने भाई सुखमणि नू अष्टपदी क्या है, किसी ने आज तक सुखमणि साहब नू अष्टपदी क्या है, साढ़े तो किसी ने किया, सुखमणि साहब कहने हैं, पर एक ही हो गया शुरू कि चौपई का पाठ करो, ये बेनती का पाठ करो। चौपई भी तो चार तुकां च लिखी हुई है, जिस तरह अष्टपदी अठा पदां च लिखी हुई है। अगर सोदर ते जाना है सो पुरख दिसेगा, बेनती करन दी जा सिखनी है, अते ठीक बेनती हो जाएगी आनंद मिलेगा। आनंद मिलन तो बाद हंकार च नहीं आना, अपनी जबान विच कर्म च हंकार नहीं लिहाना, उस वेले फिर निम्रता च रहना है। ये है साड़ी रहरास, जिस भी घर विच रहरास कठी हो गई, उथे भाई चोपा सिंह जी ने लिखा है रास कदी जाएगी नहीं। कितना आसान हो नुस्खा सानू मिल गया, जिसने रहरास इकट्ठी कर ली उसकी रास कदी जाएगी नहीं। अते सारी दुनिया जानती है कि इस करके साडे घर अंदर ये जरूरी बन गया। शाम रात नू फिर सोन वेले सोहले का पाठ है, ये नाम नू प्राप्त करन दा एक आसान रस्ता सानू दस गए। ये दूसरा अंग है। तीसरा है ਅਰਦਾਸ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਤੀਸਰਾ ਅੰਗ ਹੈ ਸ਼ਖਸੀ ਰਹਿਣੀ ਦਾ ਅਰਦਾਸ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਧੂ, ਨਾਂ ਸੀ ਉਸਦਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਕਰਕੇ। ਬੁੱਧੂ ਦਾ ਆਵਾ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਅਲਬੇਲੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਬੁੱਧੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਬੁੱਧੂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਰਾਂ 'ਚ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ। ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਬੁੱਧੂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਸਾਧੂ ਹੋਣ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਦੀਵਾਨਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਗਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਬੁੱਧੂ ਹੈ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਵੇ ਵਾਲਾ। ਉਸ ਦਾ ਆਵਾ ਪੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਵਾ ਪੱਕੇ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕੀ ਮੰਗ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਏ ਆ ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਮ ਤੌਰ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮਰਦ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇਗਾ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਆਵੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਐਸੀ ਕਹਿ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਹ ਬੜਾ ਲੋਕ ਸਾਧੂ ਮੁੱਖ 'ਚੋਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਉਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਧੂ ਕਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਐਸਾ ਜਾਂ ਥਾਪੀ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੁਸਖਾ ਦੱਸ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਸਲੇ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਆਵਾ ਪੱਕੇ, ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੁੱਧੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਮੰਗੀਏ ਨਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਗੁਰੂ ਤੇ ਮੰਗੀਏ ਨਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਭਰੋਸਾ ਸਿੱਖੀ ਭਾਵ ਅਤੇ ਦਾਸ। ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਾ ਮੰਗ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀਏ, ਜੇ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੰਗ, ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਮੰਗ, ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮੰਗ, ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕੁਛ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਮਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਭਟਕ ਜਾਏ ਕਿ ਇਸ ਘਰ 'ਚੋਂ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬਚਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਏਕਣ ਜਪੀਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਏਕਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗ੍ਰਹਿ ਸਿੱਖ ਬਰ ਅਚਲ ਨਿਹਾਰ। ਸਿੱਖਾ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਸੰਸਾਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਵੀ ਮੰਗੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਦਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਨਾ ਨਵਾਏ। ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਨਾਮ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਅੰਗ, ਕਿ ਜੋ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਅਰਦਾਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਅੰਗ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਖਸੀ ਰਹਿਣੀ ਅੰਦਰ ਅਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਚੌਥਾ ਅੰਗ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਵਾਏ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਕੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਰੌਣਕ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਈਬੇਰੀਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਬਾਕੂ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਂਦੇ? ਅਸਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਮਝਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿਤਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ। ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਲੜਾਕੇ ਹੋ, ਬੜੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਹੋ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕਈ ਕਿਤੇ ਬੜੇ ਜੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਲ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖ। ਥੱਲੇ ਹੁਣ ਜੋੜਾ ਘਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜੋੜਾ ਘਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੁੱਤੀ ਘਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਦੇਖਣਾ ਥੱਲੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸੈਂਡਲ ਹੈ, ਚੱਪਲ ਹੈ, ਬੂਟ ਹੈ, ਹਵਾਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਗਿਣਨ ਲਗਾ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਥੱਲੇ ਸ਼ਾਇਦ 200 ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਈ ਹੋਏਗੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੀ ਜੁੱਤੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੋੜਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਜੋੜਾ ਆਖਣਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਤਾਲੀਮ ਹੋਏਗੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਦੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਹੈ ਮੇਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, कि मैं जिथे जो कोई जुत्ती भी ला के रखता है मैं जोड़ देना हाँ, जे मैं संसार दियां जुतियां जोड़ सकना हाँ तो मैं संसार दियां आत्मा तोड़ांगा, मैं मनुखां नूं तोड़ांगा, यह कदी नहीं हो सकता। इस करके गुरुद्वारा जरूरी है। यह तुसी देख लो भाई अमरीक सिंह बैठे हुए ने, पहला पखावज सी गुरु पातशाह तेरे गुण तेरियां रहमतां तेरियां दातां, मैं आख रहा बेटे नूं कुछ दातां कीर्तन राही तू वंडनियां हन ताकि ये पता लगे दातां कितनिया ने। देखो रिबाब रबाब आप गुरु ने आंदी, यह जिहड़ी जोड़ी है ना, असी जोड़ी तां कहने आ, इहदा ना जोड़ी है आम तौर ते पखावज सी। यह जोड़ी गुरु अर्जन पिता ने ईजाद की है, यह जिहड़ी जोड़ी है गुरु अर्जन पिता की बनाई हुई, ये पखावज सी। महाराज ने कहा तोड़ दीए, जोड़ी होनी चाहिए है, ऐसा कीर्तन होवे जोड़ देवे संगत नूं भी ते वाहिगुरु नाल भी। इत्थे ते मैं जोड़ना तोड़न दी गल कित्थे हो सकदी है, असीं ते कहिंदे वी आ, पुराणे ते कहिंदे हुंदे सी ना जुड़ के बैठो, कदी भी कदी कहे वख हो के बैठो, साडे ते जबान ते चढ़े हुए शब्द ने। इस करके गुरुद्वारा जरूरी है। फिर मैं जोड़े ला के आवाना, जिस तरह मैं अपने जोड़े लाए ने मैं अपना हंकार ला के आवाना, इत्थे मैं धूड़ मत्थे ते लाना मत्था टेकना हाँ, अपनी श्रद्धा रखना हाँ, गुरुद्वारा शख्सियत कढ़न दा सेवा करना हाँ। इस करके अंग गुरुद्वारे नू कदी कोई न तोड़े। सिख नू दर्द ही उस वेले हुंदा है जिस वेले गुरुद्वारे दी किसी इट नू हमला हुंदा। लोकी पुछदे ने पोप ने सानू पुछया, किसी होर ने नहीं, दरबार साहब कुकर्मन ने कुकर्म कमाया, मेरी अजे तक ना समझ च आया है ना इतिहास दी समझ विच है कि आखिरी हमला श्री दरबार साहिब ते 1761 विच होया सी। 1761 तो बाद 1984 दी 5 जून तक श्री दरबार साहिब ते हमला किसे ने कीता, अंग्रेज जी ने आया, जमान भी आया, इतने साल किसे दरबार साहिब ते हमला नहीं कीता। इत्थों तक कि पंजाब कब्जा हो गया, लारेंस आ गया, डलोजी आ गया, सारे ने आके श्री दरबार साहब के बारे एक फुरमान जारी किया जड़ा अजे भी तोशेखाने च पे, भावें फट गया सी हट गया सी, तोशेखाने च किया गया कोई भी अंग्रेज भावें जरनैल है तो भावें वायसराय है, भावें शहजादा है तो भावें बादशाह है, दरबार साहब आवन वेले पैर नंगे आवे सिर कज के आवे, नहीं तो सिख की आत्मा तड़प पवेगी। ये पोप ने सानू बयान दिता, सिखो इन्हें क्यों तड़प रहे हो, भावें बड़ा जुल्म होया जड़ा पोप पाल है ना, इसने किया जल्द दरबार साहब से हमला होया, इतना क्यों तड़पती पई है सारी दुनिया, होर तो मैं कुछ सूझे है ना। मैं फिर उ जवाब दिता जरा गुस्से देना चाहिए है, मैं क्या तेरे वटीकन से हमला हो तेन पता लगे कि सिख को कितना दुख होया, तेरा ये गल मुसलमान समझ गया सी। इसलिए दरबार साहब ते जिस वेले या किसी भी गुरुद्वारे दी किसी इट नू कोई चरीट आवे सिख समझदा मेरे शरीर ते चरीट आ गई। अकाली लहर इतों शुरू हुई, रकाब गंज इतों शुरू होया, भाई रणधीर सिंह इतों पैदा हुए, सारे जितने सारे हैं। इस करके गुरुद्वारे वल कदी माड़ी नज़र नाल ना आया जे, ना बैठिया जे, अपने आप शख्सियत सोहनी होंदी जाएगी। फिर गुरुद्वारे का अगला अंग है साध संगत, यह सारा कुछ रहत मर्यादा च लिखा है, संगत ना तोड़न दिया जे, इसनों इतना मजबूत कर दियो ताकि कोई भी इत्थे आवे उसनों गुरु दा वाहिगुरु दा ते दीदार होवे, वाहिगुरु नाल उसका मेल होवे। संगत दे अगों अंग लिखे हुए ने, ये हुण आप पढ़ने कि संगत किवें मजबूत हुंदी है। संगत दे उंज ते काफ़ी अंग लिखे हुए ने पर मैं त्रह तुहानू दसने, चार दसने जरूरी हैं। सब तो जरूरी अंग है संगत अंदर कीर्तन, जिथे कीर्तन नहीं हो रहा वो संगत नहीं है। इस तो बाद है कथा, ये शब्द की विचार नहीं हो रही फिर भी संगत कायम नहीं रह सकेगी। फिर है विख्यान, जान के दो वक लिखे ने, तुसी देखना रहत मर्यादा कितने सियाने सन लोग, कथा ते विख्यान वक लिखा है ताकि शब्द की भी समझ आ जाए इतिहास की भी समझ आए। अते चौथा है हुक्म, हुक्म सुने तो बगैर भावें कोई लेट आवे हुक्म सुने बगैर नहीं जाना, क्योंकि ऑर्डर ऑफ द डे है। भावें थले लिख दिता गया है, बड़ा सोहने खुशखत नाल लिखिया जाता है हुक्म, ऑर्डर ऑफ द डे। ये हुक्म इस वास्ते है ताकि ये पता सानू लग जाए कि गुरुद्वारे आके मैं गुरु को हुक्म लेके गया, हुक्म उत्ते मैं सारा दिहाड़ी चलांगा। फिर क्योंकि शाम को उस हुक्म से देखना है कितना को टुरिया हाँ। ये गल भाई कन्हैया जी ने कही सी, वो मैं कह के आप को क्षमा मंगांगा, क्योंकि वक् वक् अंगा उत्ते असा ही पैरा दे के अपनी शख्सियत को सोहना भी बनाना है, मजबूत भी करना है। भाई कन्हैया जी ने किसी ने सवाल च किया जिवें साढ़े ते सवाल होंगे, ये मत्था टेकन वाला किसी बुत को मत्था तो नहीं टेक रहा? भाई कन्हैया जी को पूछे जिमें बुत अगे मत्था टेकन गुरु ग्रंथ साहब अगे मत्था, तो भाई कन्हैया जी कहन लगे मत्था टेकन तक दोनों बुत प्रस्त हैं, मत्था टेकन तक दोनों बुत प्रस्त हैं, पर ओ मत्था टेक के बुत नू टल खड़का के चला गया, मैं मत्था टेक के संगत च बैठ गया, कीर्तन सुनिया, शब्द सुनिया, हुक्म सुनिया, जे मैं शब्द उत्ते टुर पिया ते शब्द प्रस्त, नहीं ते मम्मी बुत प्रस्त हाँ। बस ये है शख्सियत घड़न दा रस्ता कि स्वाय शब्द तो कोई चीज़ गूंजे नहीं। इसलिए जितनी वधाई संगत नू गुरुद्वारे नू प्रबंधकां नू ताईं मिलदी रहेगी जेकर जेड़ी शख्सियत दे सत अंग हन ए वाहिगुरु मजबूत कर। शख्सी रहनी जे इंसान दी कड़ी जाएगी, अपने आप सारी दुनिया अंदर सिख दी खुशबू फैलेगी। अते यही सानू गुरु पातशाह समझाते सन, लोग पुछते ने इस्लाम किवें फैलिया, बड़ी बड़ी किताबा लिखिया ने, इस्लाम की शायद कैसे हुई उन्होंने बड़े बड़े लोगों ने लिखे, सारिया पुस्तक पढ़ के एक चीज़ विचों मैनू मिली कि इस्लाम फैलन का कारण जो मैनू दिसिया है यही है। उस दी हदीस च लिखिया है जिथे तू रह रहा है तेरे सज्जे पासे पंजी बंदे, जेड़े तेरे घर दे सज्जे पासे पंजी बंदे रात नू भुखे नहीं सोने चाहिए। आप इस्लाम फैल गया। अते दूसरा उस कोल सूफी ऐसे संत मिल गए जिन्हां दी मिठास शक्कर गंज वांगू सी, मिट्टी नू हथ पांदा सी फरीद ते शक्कर हो जांदी सी। उन्हां दे कदी सूफियां दे ना सुनो भाई मिठा, उन्होंने ना ही कुछ ऐसे सन। इसलिए कोई भी प्रचारक, कोई भी महात्मा, कोई भी अगर उसकी मिठास नहीं है, क्रोध है, गुस्सा है, हंकार है, श्राप दे रहा है, समझो सिखी की शख्सियत नू हटा रहा है। साढ़े अंदर तो हुक्म है, गुरु नानक तो बड़ा कौन हो सकता है? कि आते ना सानू फला गल करो फला हो रही है, तो मैं उन्होंने कहा गुरु नानक तो असी वे नहीं हाँ। गुरु नानक पिता की तुक है, नानक सच कहे बेनंती, सच भी बेनती नाल कहना है। किसी वेले कोई इंसान ये कारण से सिखी भी संसार ते फैली है, होर फैलेगी जे पहला अंग रैत मर्यादा दा शख्सी रहनी या शख्सियत मुकम्मल हो जाए। बाकी इसके जो अंग हैं गुरमत रैत दे तकरीबन गुरुद्वारे दे इन्हां उत्ते असी फिर आप ही विचार करदे करदे उत्थे पुजांगे ताकि सानू पता लग जाए कितनी रहमत इस सदी अंदर साढ़े ते होई कि सानू रहत मर्यादा मिल गई, जिस इंसान जिस नाल असी ऐन जुड़े हुए हाँ। अते जे किसे नू कदी कोई जरा भी मनी शंका उपजे, आखिरी लाइन फिर रहत मर्यादा च लिखी हुई है, अकाल तख्त नू लिख दिओ, अपने आप उतों कोई उतर आएगा, तुहाडे शंके तुहाडियां उठियां रस्ते अंदर वाद विवाद हट जाएगा। आखिरी तो आखिरी लाइन रैत मेरा दिल पाई है कि होर कोई स्थान ते अपील नहीं करनी, अकाल तख्त है जो सानू इस नाल गुरु नाल पंथ नाल संगत नाल जोड़दा रहेगा। ये मैं मन च आया सी कि इस रैत मर्यादा जो प्रवानत है इस दे हर अंग नू सानू समझना जरूरी है ताकि किसी वेले गुरु रामदास महाराज की तुक सानू सदा याद रवे, पेड़ मडाहू कटिया तिस डाल सुकंदे, जे पेड़ कटिया गया ते डालियां अपने आप सुक जाणगियां, मर्यादा उते कोई चोट ना करे, यही है पेड़ नू कायम रखन दी जाच। वाहिगुरु जी का खालसा।
पीवो सदा चिर जी।